الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله مولانا العظيم. مستورات کی مجلس میں قرآن مجید میں جو عورتوں کے واقعات اور قصے آئے ہیں وہ سنائے، تقریباً 10 سال تک سنائے، اس کو ریکارڈنگ کے ذریعے سے لکھ کر کے اس کی کتاب پبلش کی گئی اور وہ کتاب اب دنیا میں بہت سے لڑکیوں کے مدرسے کے کورس میں، سیلیبس میں پڑھائی جاتی ہے. پھر حدیث میں آئے ہوئے عورتوں کے قصے بیان کرنا مستورات میں شروع کیا ہے 4 سال سے، تو اس کے بھی 4 حصے کتاب چھپ گئی اور بہت سے مدرسوں کے لیڈیز سیلیبس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. قرآن میں آئے ہوئے عورتوں کے قصے بہت سی مرتبہ چھپ گئے، چھپ رہے ہیں، اور اللہ مولوی عبداللہی صاحب کو جزائے خیر دے، ان کی برکت سے انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو گیا اور وہ انشاءاللہ ان قریب انگلش میں بھی چھپ جائے گی. تو تبھی دل میں سوال آتا تھا کہ لیلونگ وے میں صرف عورتوں میں بیان ہوتے ہیں کہ انہی کے بیان چھپتے ہیں اور دنیا میں جاتے ہیں؟ مسجد کی مجلس آج تک ایک بھی نہیں چھپ سکی. تو یہاں آنے سے پہلے سوچتا رہا بار بار کہ کوئی ایسا ٹاپک شروع کیا جائے کہ وہ بھی کتاب کی شکل میں چھپ جائے اور امت کے لیے فائدے کا قیامت تک ذریعہ بن جائے. دل میں بات آئی کہ قرآن میں جس طرح عورتوں کے قصے ہیں اس طرح مردوں کے بھی تو قصے ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں اور ان کی امتیں بھی ہیں. وہ تو بہت سے میں پہلے سنا چکا ہوں، لیکن نبیوں کے علاوہ اور ان کی امت کے علاوہ کچھ دوسرے جنرل قصے بھی مردوں کے اور جماعتوں کے قرآن میں موجود ہے. کا اللہ کا نام لے کر کے وہ شروع کرتے ہیں. اللہ چاہے تو یہ بھی امت کے لیے تا قیامت فائدے کا ذریعہ بن جائے. تو پھر میں نے سورہ بقرہ کی سفر میں تلاوت شروع کی کہ دیکھو تو صحیح کہ سورہ بقرہ میں سب سے پہلا مرد کا قصہ, جماعت کا قصہ کون سا آتا ہے, یعنی قدر تفصیل کے ساتھ, صرف نام نہیں. تو یہ واقعہ سب سے پہلے سامنے آیا. انشاءاللہ اس سال سے ہم درس قرآن میں قرآن میں آئے ہوئے مردوں اور جماعتوں کے قصے شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرماوے اور اپنے فضل سے مختلف شکلوں میں تا قیامت اس کے فیض کو عالم میں عام تام اور جاری ساری فرماوے. یہ قصہ سورۃ البقرہ میں حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام کے زمانے کا قصہ ہے. یہ لوگ ان کو کنگ ڈیوڈ کہتے ہیں اور قرآن میں ہم داؤد کہتے ہیں اور بہت ادب سے ہم نام بولتے ہیں حضرت داؤد علیہ الصلات والسلام. پیلسٹائن میں ان کی قبر ہے, سفید رنگ کا ماربل قبر پر لگا ہوا ہے اور وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں. یہودی لوگ وہاں بیٹھ کے تورات پڑھتے ہوتے ہیں. میں جب گیا تھا ان کی قبر کے اوپر تو ہم نے جب عیسیٰ علیہ ثواب پڑھنا شروع کرنا شروع کیا قرآن پڑھ کر کے, تو ان یہودیوں نے آ کر کے تورات پڑھنا شروع کیا. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ واقعہ ہے. ہماری قرآن کی ہسٹری کے اندر ایک سی یعنی سمندر کو بہت ہی اہمیت ہے, امپورٹنٹ ہے. اس کا نام ہے بحر قلزم. قلزم سمندر, دریا. تو یہ قصہ ایلہ نام کا ایک شہر قلزم سمندر کے کنارے کے اوپر ہوا ہے. اباؤٹ 70,000 اس جگہ کا پاپولیشن تھا. 70,000 لوگ وہاں پر رہتے تھے اور سمندر کے کنارے پر سی سائٹ پر رہتے تھے. تو ان کو مچھلی پکڑنے کا بڑا شوق تھا, مچھلی کھانے کے بڑے شوقین. اور جنرلی سی سائٹ پر رہنے والے لوگ مچھلی کھانے کے بھی شوقین ہوتے ہیں, پکڑنے کے بھی شوقین ہوتے ہیں, اور دونوں چیز انجوائے اور مزے کی ہے, مچھلی کا شکار بھی اور مچھلی کو کھانا بھی. یہ قصہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا تو اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے. پہلی بات کہ جو یہودی مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, وہ یہودی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کے سچے بندے ہیں, ہم نے کبھی کفر نہیں کیا, ہم نے کبھی شرک نہیں کیا, ہم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. اور یہ جو آیت میں قصہ ہے وہ پروف ہے, دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت پہلے جو یہودی تھے انہوں نے کفر بھی کیا, انہوں نے شرک بھی کیا. لیکن حضور کے زمانے کے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ یہ قصہ کسی کو خبر نہیں ہے، بہت سال پہلے ہو چکا ہے. ایک مرتبہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مدینہ کے یہودیوں کو کہا کہ تمہارے باپ دادا پاسٹ ٹائم میں جو کفر شرک کرتے تھے، تم نے بھی اپنے باپ داداؤں کی طرح کفر شرک کیا اور تم بھی ان کے غلط راستے پر چلے ہو. تو حضور کے زمانے کے یہودی کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی کفر نہیں کیا، ہمارے باپ داداؤں نے بھی کفر نہیں کیا. وہ ڈنگ مارنے لگے، ہوشیاری مارنے لگے کہ ہم تو پکے ایمان والے ہیں، ہم بھی کفر نہیں کرتے، ہمارے باپ دادا بھی کفر نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت بھیجی حضرت جبرائیل کے ساتھ، اور جو یہودی لوگ ہوشیاریاں مارتے تھے ان کی پول اللہ تعالیٰ نے کھول دی، اور ان لوگوں کو تو بڑی حیرانی ہو گئی کہ جو قصہ کسی کو خبر نہیں، وہ قصہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. لگتا ایسا ہے کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے ضد کے اندر. اس طرح یہ آیت اور یہ قصہ اللہ نے قرآن میں بھیجا. دوسرا سبب اس کا یہ سمجھ میں آتا ہے، تفسیر کی روایتوں میں ہے کہ اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کو، یہودیوں کو کہا کہ ویک کے 7 ڈیز ہے، اس میں سے جمعہ کا دن تم عبادت کے لیے لے لو کہ ہر جمعہ کے دن تم اللہ کی عبادت کرنا. اللہ نے ان کو چوائس دی، لیکن وہ ضد پہ اترے، کہنے لگے کہ جمعہ ہم کو نہیں چلے گا، ہم کو تو سیٹرڈے چاہیے عبادت کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے کہ میں تم کو کہہ رہا ہوں کہ جمعہ کے دن عبادت کرو، نہ تم ضدی بن کے کہہ رہے ہو کہ سیٹرڈے کو عبادت کریں گے. تو جب تم ضد پہ اترے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے عذاب آیا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر پکڑ آئی. تیسری بات یہ ہوئی کہ جو سنیچر کا دن سیٹرڈے اللہ کی عبادت کے لیے انہوں نے پسند کر لیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آرڈر دیا کہ سنیچر کا دن، مطلب جمعہ کو مغرب سے لے کر سنیوار کی مغرب تک، جیسے کہ ہم لوگ جمعہ کو عبادت کرتے ہیں تو اس کا میننگ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب تک. تو یہودیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ سنیوار کا میننگ جمعہ کی مغرب سے سنیوار کی مغرب 24 آورس تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت ایسی کرنی ہے کہ دنیا کا کوئی کام تم نہیں کر سکتے، 24 آورس اونلی عبادت تم کو کرنی ہے. یہ تو اللہ نے اس امت پر آخری نبی کی برکت سے آسانی کی کہ ہمارے لیے جمعرات جمعہ عبادت کا ہے تو صحیح، لیکن ہم بزنس بھی کر سکتے ہیں، کاروبار بھی کر سکتے ہیں، روزی بھی کما سکتے ہیں. خالی اللہ نے اتنا آسان کیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع, کہ جمعہ کی اذان ہو جائے بزنس بند کر دو, کمانا بند کر دو, مسجد میں آ جا. صرف اتنا کم ٹائم کے لیے بزنس کرنے سے اللہ نے منع کیا. باقی ان بنو اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ پورے 24 آورز, جمعہ کی مغرب سے شنیوار کی مغرب تک تم دنیا کا کوئی بزنس نہیں کر سکتے. یہ آرڈر آیا اللہ کا, اور آج بھی وہ لوگ اس آرڈر کے اوپر عمل کرتے ہیں. میں نے لندن کے اندر دیکھا ان کا ایک سینیگوگ ہماری ایک مسجد کے بازو میں ہے, مسجد قبا جہاں میں جاتا ہوں لندن میں, اس کے بالکل بازو میں سینیگوگ ہے. تو جمعہ کے دن شام کو یہ لوگ چپل بھی نکال دیتے ہیں, جمعہ کی شام سے شنیوار کی شام تک چپل بھی نہیں پہنتے, اور گھر میں لائٹ چالو ہو تو بند نہیں کرتے, بند ہو تو چالو نہیں کرتے, کھانا بھی نہیں پکاتے, جو باسی کسی ہو وہی کھا لیتے ہیں, رات بھر جاگتے ہیں, سینیگوگ میں آ کر کے سر ہلا ہلا کر کے عبادت کرتے ہیں. یہ خود میں نے دیکھا ہے وہاں پر. اپارٹمنٹ میں رہنے والوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے, لفٹ کی سوئچ بھی نہیں دباتے, کوئی آوے اس کی راہ دیکھتے ہیں کہ آوے نے لفٹ میں بیٹھے تو پھر وہ اوپر جاتے ہیں. خیر تو وہ لوگ آج بھی اس کو فالو کرتے ہیں کہ جمعہ کے دن مغرب سے شنیوار کی مغرب تک یہ لوگ بالکل تبع اللہ کا حکم, کوئی دنیا کا کام نہیں کرنے کا. اب دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا تو مچھلی کا شکار بھی نہیں کر سکتے, فشنگ بھی نہیں کر سکتے, اور یہ لوگ دریا کے کنارے پر رہتے تھے اور مچھلی کھانے کے بڑے شوقین لوگ تھے. تھوڑے دنوں تک تو اللہ کی بات پر عمل کیا کہ سنیچر کے دن فشنگ کرتے نہیں تھے, مچھلی کا شکار کرتے نہیں تھے, لیکن کوئی آدمی دریا کے کنارے پر سیٹرڈے کو گیا ہوگا, اس نے یہ دیکھا. یہ قصہ آگے دوسری جگہ بھی ہے قرآن میں, وہ انشاءاللہ کل میں پڑھوں گا آپ کے سامنے. اس نے جا کر کے دیکھا, استعتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تعتیہم. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ویک میں 7 ڈیز ہے, تو 6 دن تک فشنگ بہت ہارڈ ہوتی تھی, مچھلی پکڑنے کے لیے دریا میں دور دور جانا پڑتا تھا, ڈیپ میں جانا پڑتا تھا, اور سیٹرڈے کو جس دن فشنگ کرنے کی پابندی تھی اس دن کوئی دریا پہ جا کے دیکھتا ہے بڑی بڑی مچھلیاں دریا کے کنارے کے اوپر گھوم رہی ہے, اور بالکل سامنے سامنے بڑی بڑی مچھلی پانی میں جم کر رہی ہے, اچھل رہی ہے, کود رہی ہے. تو اس نے آ کر کے پوری بستی کے اندر سب کو کہا, ارے بھائی سیٹرڈے کو تو عجیب بات ہے, مچھلیاں سب دریا کے کنارے پر آتی ہیں, لگتا ایسا ہے کہ مچھلی کو بھی پتا چل گیا کہ سیٹرڈے کو اللہ کی طرف سے شکار کرنے کی پابندی ہے اور کوئی ہماری شکار کرنے نہیں آئے گا, اس لیے مچھلیاں بھی کنارے کنارے پر آتی ہے. یہ جا کر کے پورے لوگوں میں اس نے اعلان کر دیا. اور یاد رکھو کچھ حقیقت بات ایسی ہے بھی کہ اللہ تعالیٰ ایگزام لیتے ہیں کہ کون میرے رول کو فالو کرتا ہے, میرے لا کے اوپر عمل کرتا ہے, اس کا اللہ ایگزام لیتے ہیں. حقیقت بات بھی ایسی تھی کہ ویک میں 6 دن مچھلیاں دور چلی جاتی اور فشنگ ہارڈ ورک ہو جاتا تھا, اور سیٹرڈے کو مچھلیاں بالکل کنارے پر آتی, گھومنے کے لیے آتی, उछलती कूदती, वो जानती थी कि आज कोई शिकार करेगा नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक बात थी। उसका एग्जाम्पल दो, हदीस में भी उसका नमूना है कि जब सहाबाए किराम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना से एहराम बांध करके मक्का गए, तो उस जमाने में 8 दिन का सफर होता था और सहाबा शिकार करने में, हंटिंग में बहुत एक्सपर्ट थे, बहुत एक्सपर्ट और माहिर थे सहाबा हंटिंग के अंदर। अब एहराम है और एहराम के अंदर तो हंटिंग कर नहीं सकते, शिकार कर नहीं सकते, मना है जमीन का शिकार करना। तो सहाबा हुजूर के साथ पूरा काफिला जा रहा है और शिकार को अल्लाह ताला सामने भेज रहे हैं, नील गाय। उसके दिल के अंदर अल्लाह ने बात डाली, जाओ सहाबा का काफिला जा रहा है उसके पास पास जाओ, वो आंख से देखे और हम इम्तिहान लेवे कि ये शिकार करते हैं कि नहीं करते हैं। गोया खुद अल्लाह ने जानवरों के दिलों में बात डाली, एनिमल्स के दिल में अल्लाह ने बात डाली और वो एनिमल सहाबा के करीब करीब आए, लेकिन सहाबा तो अल्लाह के ऑर्डर पर अमल करने वाले थे, उन्होंने शिकार नहीं किया। किसी किसी जगह पर ऐसे सहाबी आ गए जिनका एहराम नहीं था, तो उन्होंने शिकार करके सबकी दावत भी की। तो ये सहाबा को भी हुजूर के जमाने में ये बात पेश आई कि एहराम में ये शिकार करते हैं कि नहीं करते। खुद सहाबा के सामने सामने एनिमल्स और जानवर आए, तो ये अल्लाह की तरफ से बात थी कि पूरे वीक में 6 डेज सारी की सारी मछलियां फिश दरिया में दूर जाती और सैटरडे को बिल्कुल करीब करीब नजदीक नजदीक आती और उछल कूद करती। अब सब पब्लिक देखने गई सैटरडे को कि ये जो कह रहे हैं ट्रू है, सच्ची बात है या कोई गड़बड़ बात है। तो नेक्स्ट सैटरडे को सब लोग देखने गए तो कहा बात तो बिल्कुल सच्ची है कि शनिवार के दिन सी साइट के ऊपर मछली मछलियां मछलियां ही मछलियां, और संडे को गए तो सब भाग गई थी दरिया के अंदर, दूर दूर एक भी नजर नहीं आती। अब इनके मुंह के अंदर पानी आ रहा था कि शनिचर को फिशिंग इतनी इजी है और बड़ी बड़ी मछलियां आती है तो कुछ करना चाहिए, कुछ प्लानिंग करनी चाहिए। शैतान ने उनको एक प्लानिंग बताई, ऐसी प्लानिंग बताई कि उनके ख्याल में, उनकी सोच में कि हम अल्लाह का हुक्म भी पूरा कर रहे हैं और शिकार भी कर रहे हैं। ऐसा कभी होवे? जैसे कोई आदमी आपको यूं कहे, वो हजरत शाह अताउल्ला साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा मशहूर है ना, कि किसी ने कहा हजरत रोजे बहुत भारी पड़ते हैं, कोई ऐसा मसला बताओ कि खाऊं भी पीऊं भी और रोजा भी रहे, ये भूखे प्यासे रहना और रोजे रखना तो बहुत हार्ड वर्क काम है, तो खाऊं भी पीऊं भी ने रोजा भी रहे। तो अल्लाह वालों की जबान पर बहुत अच्छा जवाब आता है। उन्होंने कहा एक काम करो कि तुम लोगों को कहो कि मुझे मारो, मस्जिद के दरवाजे पे खड़े हो जाओ, लोगों को कहो कि मुझे मारो, बेकसूर मारो। अब तुम्हें लोग मारेंगे तो मार खाते रहो और उस पर गुस्सा आवे वो पीते रहो, मार खाओ ने गुस्सा पियो तो तुम्हारा रोजा भी टूटेगा नहीं, खाना भी चलेगा ने पीना भी चलेगा। तो खैर ये यहूदी बनू इसराइल को शैतान ने एक प्लानिंग बतलाई कि तुम अल्लाह के ऑर्डर को पूरा भी करो और शिकार भी हो जावे। कहा ये कैसे पॉसिबल है? तो शैतान ने इनको सबक पढ़ाया, हीला करो, हीला हीला कैसे सिखाया शैतान ने कि सैटरडे को सी साइट पर जाओ, बहुत सारी मछलियां हैं तो मछली पकड़ो और उसकी जो दुम है उछड़ी पीछे वाला हिस्सा उसके साथ नायलॉन की डोरी बांधो और नायलॉन की डोरी मजबूत डोरी बांध करके लंबी डोरी दरिया के किनारे के ऊपर किसी ट्री के साथ बांध दो या किसी पत्थर के साथ बांध दो और फिर पानी में मछली को छोड़ दो, बांध दो और फिर छोड़ दो पानी में और संडे को जाकर के वो डोरी खींच के मछली निकाल लेने की और ला के बारबेक्यू बना के खा लेने की। ये शैतान ने उनको एक हीला बताया कि इस तरह करोगे कि सैटरडे को जब मछली सी साइट के ऊपर आती है तो पकड़ के बांध भी दो, दरिया में डाल भी दो और शिकार मत करो और संडे मंडे जाकर के फ्रेश खींच के लाके खा जाओ। ये चीज गलत थी, रॉन्ग थी, लेकिन शैतान ने उनको ये गंदा हीला बतलाया, गंदी तदबीर बतलाई। दूसरी प्लानिंग शैतान ने ये बतलाई कि दरिया के किनारे के ऊपर छोटी छोटी नहर बनाओ, पानी की नहर खोदो छोटी छोटी और नहर खोद करके आगे बड़ा तालाब बनाओ, बहुत बड़ा लेक बनाओ, छोटा लेक बनाओ, तालाब बनाओ और दरिया का पानी और लेक को कनेक्टेड कर दो छोटी छोटी नाली और नहर के जरिए से और उस पर दरवाजे लगा दो। आपने इंडिया में अगर देखा हो तो बड़े बड़े डैम में से जो नहर निकलती है उस नहर के ऊपर गेट लगाते हैं, गेट खोलो पानी पास होगा, गेट बंद कर दो पानी रुक जाएगा। तो इस तरह शैतान ने उनको ये सिखलाया कि दरिया में से नहर बनाओ और आगे तालाब बनाओ और बीच में गेट डाल दो और फिर क्या करना कि सैटरडे को गेट ओपन करो और पानी सारा का सारा छोटे छोटे तालाब में ले आओ। अब जब दरिया में से पानी आएगा तो उसके साथ साथ किनारे की मछलियां भी छोटे तालाब में आ जाएगी और जब छोटे तालाब में पानी के साथ मछलियां आ जाएगी तो गेट बंद कर दो और फिर पूरा वीक 6 दिन छोटे तालाब में से तो पकड़ना इजी होता है का जो है संडे से लेकर के नेक्स्ट फ्राइडे तक पूरा 6 दिन वो छोटे छोटे लेक में से तालाब में से शिकार करो और खाओ। ये 2 गलत प्लानिंग शैतान ने उन लोगों को सिखाई। तो अबाउट पॉपुलेशन में से 12,000 लोग ऐसे थे, 12,000 आदमी कि उन्होंने शैतान का बताया हुआ तरीका अपना लिया। सैटरडे को दरिया पर गए और हर एक मछली पकड़ के बांध रहा है और जो है एक तरफ झाड़ या पत्थर से बांधा, इधर पानी में डाल दिया। अल्लाह हमने तो शिकार नहीं किया, हमने तो खाली मछली बांधी है, आपका कोई कानून हमने तोड़ा नहीं, हम तो शरीयत पर अमल कर रहे हैं और जो है हम सैटरडे को बिल्कुल शिकार नहीं करते, अल्लाह हम तो सिर्फ मछली को बांध रहे हैं। ये कहकर के हजारों मछलियां उन्होंने बांध दी और दूसरे लोगों ने तालाब के अंदर पानी लेकर के मछलियों को कॉर्डन कर लिया, घेर लिया और कह रहे कि अल्लाह हम आपके लॉ को फॉलो कर रहे हैं, हम आपके लॉ को तोड़ते नहीं हैं। ये जो है करना इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत में ये बहुत गलत काम था, हराम और नाजायज काम था। उसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब भेजा और ये सब काम उन्होंने मछली पकड़ने और खाने के शौक में किया। इसलिए हमें याद रखना चाहिए ये पॉइंट कि बहुत से काम जायज होते हैं, हलाल होते हैं, लेकिन उसका शौक ये आदमी को कभी इतना आगे ले जाता है कि आदमी फिर नाजायज और हराम काम करने लग जाता है। जायज काम, लेकिन उसका शौक हद से आगे बढ़ जावे, आउट ऑफ बॉर्डर हो जावे, तो वो चीज नाजायज और हराम और गुनाह में ले जाने का जरिया बन जाती है। बाद लोग शिकार करने जाते हैं हंटिंग के अंदर, तो नमाज भी छोड़ देते हैं और शिकार में जो नाजायज काम है वो भी करने लग जाते हैं, गुनाह के काम भी करने लग जाते हैं। तो आदमी को अपने शौक को पूरा करने में शरीयत की बॉर्डर को फॉलो करना चाहिए, शरीयत के लॉ को फॉलो करना चाहिए, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये इस किस्से का बहुत बड़ा सबक और लेसन है। तो इन लोगों ने शौक पूरा करने के लिए बॉर्डर क्रॉस किए। अब जब ये किस्सा हुआ तो वहां 70,000 का जो अबाउट पॉपुलेशन था उसमें चार तरह के लोग हो गए। ऐसे मौके पर लोगों में पार्टियां हो जाती है, चार जमात हो गई। एक जमात अल्लाह के नेक बंदों की, नहीं अनिल मुनकर करने वालों की, बुराई से रोकने वालों की, जिन्होंने मछली का शिकार नहीं किया, मछली को बांधा भी नहीं, मछली को छोटे लेक में भी नहीं लाए, बल्कि कहने लगे कि ये तुम गलत काम कर रहे हो, ये रॉन्ग काम तुम लोग कर रहे हो। और शुरू से उन्होंने लोगों को गलत काम से, बुराई से रोकना चालू किया और कंटिन्यू मुसलसल लोगों को रोकते रहे। एक जमात ऐसी थी वहां पर अल्लाह के नेक बंदों की। अल्लाह ऐसी जमात के अंदर मुझे आपको भी शामिल फरमावे। कोई भी गलत काम हो, गुनाह का काम हो, बुराई का काम हो, उसको रोको, जबान से रोको, हाथ से रोको, दिल से बुरा समझो, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उन्होंने रोकने का काम शुरू किया। ये एक अच्छे लोगों की जमात हुई। दूसरी जमात ये बदमाश लोगों की, कि जिन लोगों ने अपना शौक पूरा करने के लिए मछलियां पकड़ना चालू किया, बांधना चालू किया, लेक में लाके कॉर्डन करना शुरू किया, ये बदमाश लोगों की जमात, वो अबाउट 12,000 लोग थे। एक तीसरी जमात थी, वो तीसरी जमात में कौन लोग थे? उन्होंने थोड़े दिनों तक नहीं अनिल मुनकर का काम किया, बुराई से रोकने का काम किया, जब देखा कि लोग बात मानते नहीं, गुनाह छोड़ते नहीं, बुराई छोड़ते नहीं, तो वो ठंडे होके बैठ गए और घर में जाके बैठ गए कि भाई हमने तो समझाया, रोका, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है, अब कितना हम रोकने का काम करें, कितना नहीं अनिल मुनकर का काम करें, चलो अब अपना बिजनेस भी करो, अपना धंधा भी करो, अपना जॉब भी करो, कब तक इनके पीछे रोकने का काम करेंगे। तो थोड़े दिनों तक, थोड़े टाइम तक नहीं अनिल मुनकर बुराई से रोकने का काम करके कुछ लोग बैठ गए, खामोश हो गए, छोड़ दिया बुराई के काम से रोकने का काम, छोड़ दिया। ये भी गलत काम है। आज हम में से बहुत से लोग हैं थोड़े दिनों तक बुरे काम से रोकने की मेहनत करते हैं, जबान से रोकते हैं, हाथ से रोकते हैं, दिल से बुरा मानते हैं, लेकिन देखा कि कोई हमारी बात सुनता नहीं तो छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं, बल्कि आइंदा मौका मिलेगा तो वो बुराई के अंदर जाएंगे और खुद भी वहां हिस्सा लेंगे। जैसे कि कहा कि जिस शादी में म्यूजिक हो रहा है, जिस शादी में मर्द औरत मिक्स हो रहे हैं, तो थोड़े दिन तक रोकने का काम किया, भाई गलत काम है, शादी में म्यूजिक मत लाओ, डांस मत लाओ, शादी में मर्द औरत को मिक्स मत करो, थोड़े दिन रोका, नहीं रुका, तो फिर रोकना छोड़ दिया। सिर्फ छोड़ा नहीं, दावत दी तो वहां बाई चढ़ा के खाने भी चले गए और गले तक खाने भी बैठ गए। ये भी गलत है, आगे कुरान की आयत में आ रहा है, मैं उसको प्रूफ करता हूं कुरान से। तो ये तीसरी जमात थी कि थोड़े दिनों तक नहीं अनिल मुनकर का काम किया, बुराई से रोकने का काम किया, फिर सोडा वाटर की तरह ठंडे होकर के चुपचाप होके बैठ गए। एक चौथी जमात थी वहां पर, उन लोगों ने बिल्कुल चुप, किसी को बुराई से रोका भी नहीं और खुद भी बुरा काम किया नहीं, गूंगे लोग। और कम्युनिटी में ऐसे पीपल भी बहुत सारे होते हैं कि भाई अपने आप को भूंडा मत बनाओ, अपने आप को बोल के बदनाम मत करो, बोलो मत वरना अपने ऊपर जो है बुराई आएगी। पॉपुलेशन में, कम्युनिटी में ऐसे लोग भी होते हैं, वो क्या कहते हैं, हिकमत हिकमत, मसलहत मसलहत, अपने बोलने का नहीं, अपने चुप रहने का, अपने दिखते रहने का, कुछ बोलने का नहीं। ये भी खतरनाक लोग हैं। आगे कुरान के अंदर उनका भी तस्केरा आ रहा है। तो एक चौथी जमात थी गूंगे लोगों की, चुप रहने वालों की, और बुराई का काम किया भी नहीं, बुराई के खिलाफ बोले भी नहीं। ये एक चौथी जमात थी। सुन लो अच्छी तरीके से, वाकियात में आता है कि जिस कौम के अंदर खुल्लम खुल्ला ओपनली गुनाह का काम हो, हराम का काम हो, और कौम और कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग गूंगे और खामोश हो जावे, चुप रहे, तो अल्लाह उस कम्युनिटी को अजाब से बचाते नहीं है। अल्लाह का अजाब आता है ऐसी कम्युनिटी के ऊपर। इसलिए ये चुपचाप रहने वाले, हिकमत मसलियत की तस्वीर पढ़ने वाले, ये भी बहुत बुरे और खतरनाक लोग हैं। तो 70,000 पॉपुलेशन था आइला शहर में, वो चार जमात बन गई अलग अलग। अल्लाह ताला की तरफ से उनके लिए खतरनाक अजाब आया। वो अजाब आगे वाली आयतों के अंदर है, वो इंशाल्लाह आइंदा मजलिस के अंदर जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के अंदर, दीन के अंदर हीले बहाने करने से बचने की तौफीक अता फरमाए। दीन दीन है, अल्लाह का कानून अल्लाह का कानून है, उसको पूरा करो, उसको फॉलो करो, उसमें कोई बहाना मत करो, उसमें कोई हीला और तदबीर मत करो। जैसे कि ज़कात फर्ज है तो हिसाब करके काउंटिंग करके ज़कात निकाल डालो, उसमें कोई बहाना और इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। हीला बहाना बड़ी खतरनाक चीज है। देखो हीले के ऊपर एक मसला बता करके बात पूरी करो। हीला करते हैं दो तरह का होता है। एक हीला होता है शरीयत के ऑर्डर और लॉ को बातिल और खत्म करने वाला, वो हराम और नाजायज है। जैसे यहां इन लोगों ने किया कि अल्लाह का ऑर्डर था सैटरडे को फिशिंग मत करो, तो उन्होंने कैसा हीला किया, मछलियां बांध दी, मछलियों को छोटे छोटे लेक में ले आए, ये हीला किया। उससे शरीयत का हुक्म बातिल होता है, टूट जाता है। ये शरीयत की नजर के अंदर हराम है हीला। उसका एक एग्जाम्पल आपको दूं, लेकिन वादा करो कि करेंगे नहीं, कहो इंशाल्लाह तो एग्जाम्पल दूं। बाद लोग क्या करते हैं, अल्लाह बचावे, कि पहली रमजान से पहली रमजान जकात का हिसाब रखते हैं। तो अब पहली रमजान एक साल पूरा होने के ऊपर जकात फर्ज होती है, तो वो क्या करते हैं बदमाश लोग, पंद्रहवीं शाबान को अपना बैलेंस, सेविंग्स, सब कुछ अपनी बीवी को या बेटे को गिफ्ट दे देते हैं कि ले मैंने सब तुझे गिफ्ट दे दिया, ने फिर 15 रमजान को दोबारा उसके पास ले लेते हैं, वापस ले लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, ताकि वन ईयर कंटिन्यू उसके ऊपर पूरा ना होवे, क्योंकि वन ईयर कंटिन्यू पूरा होगा तो ज़कात फर्ज होगी। अब वन ईयर कंटिन्यू पूरा नहीं होने देते, उसमें 15 डेज या वन मंथ कम कर डालते हैं। तो जितना अपना सेविंग्स है, बैलेंस है, गोल्ड है, सिल्वर है, वो सब 15 शाबान को बीवी को कहेंगे ले तुझे गिफ्ट दे दिया, ताकि साल पूरा ना हो। या फिर 15 रमजान को वापिस मांग लेते हैं। ये हीला है शरीयत के हुक्म को बातिल करने वाला, जो हराम है, नाजायज है और बहुत गलत काम है। क्योंकि मुफ्ती है हमारे नाम के साथ, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें आती है हमारे पास, इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपको दिया। दूसरा एक हीला है शरीयत में जायज और ट्रू और सही हीला, एक तो खुद हदीस में मौजूद है, खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हीला अपनी उम्मत को बतलाया, बुखारी शरीफ में भी है और दूसरी हदीस की किताबों में भी है। वो हीला क्या है? एग्जाम्पल, खजूर को खजूर के बदले में बेचना हो तो इक्वल यानी बराबर बराबर होना जरूरी है। अगर खजूर में कम ज्यादा करने जाओगे तो गुनहगार होंगे। एग्जाम्पल, 1 किलो अजवा है और 1 किलो सुक्करी है। अब अजवा का रेट 100 रियाल किलो होता है और सुक्करी 15 रियाल किलो होता है, दोनों के रेट में बहुत बड़ा फर्क है। अब तुम डायरेक्ट बेचो कि 1 किलो अजवा बेची 1 किलो सुक्करी के बदले में, तो जायज है। लेकिन आप क्या कहो, अजवा तो बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी है, इसीलिए 1 किलो अजवा में बेचता हूं 5 किलो सुक्करी खजूर के बदले में, ये नाजायज और हराम है। कि खजूर खजूर के बदले में बेचो डायरेक्ट, तो उसको इक्वल बराबर बराबर बेचना जरूरी, चाहे क्वालिटी डिफरेंट हो। और हुजूर ने हदीस में ऐसी 6 चीजें बतलाई है। तो ये कि जो एक सेम चीज अगर क्वालिटी डिफरेंट हो तो भी इक्वल बराबर बराबर वेट पर बेचना जरूरी है। कम ज्यादा करोगे तो हराम है। उसी को इंटरेस्ट कहते हैं, सूद कहते हैं, ब्याज कहते हैं। लेकिन हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसमें हीला बतलाया इसको जायज करने का। बुखारी शरीफ में 2-4 जगह ये हदीस है। हुजूर ने क्या फरमाया कि इसको कैसे जायज करोगे? कि 1 किलो एग्जाम्पल अजवा खजूर है, वो बेचो पैसों के बदले में, समझो कि उसको तुमने 100 रियाल के बदले में बेचा, और फिर वो 100 रियाल के बदले में लो क्वालिटी की खजूर खरीद लो। ये हीला खुद हुजूर ने बतला दिया। काम वही होगा लेकिन जायज तरीके से होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को ये हीला बतलाया, ये तामील के लिए, ताकि उम्मत आसानी से शरीयत पर अमल कर सके, इसके लिए हुजूर ने हीला बतलाया। तो तामील हुक्म शरीयत, उसके लिए हीला जायज है। और हीले के जरिए शरीयत का लॉ बातिल होता हो तो वो नाजायज और हराम है। ये है उसका एक एग्जाम्पल आपके काम का बतला दूं, जायज हीले का। हमारे यहाँ फिका की किताबों में लिखा हुआ है ये हीला। कोई आदमी का इंतकाल हो गया और उसके जिम्मे बहुत सारी नमाजें कजा है, मसलन 50 साल की नमाज कजा है, खाली जुम्मा पढ़ने बेचारा आता था और रमजान में भी कभी कभी आता था। अब 50 साल की नमाज कजा करके गया, उसके मरने के बाद उसका बेटा आप जैसा नेक और दीनदार है, उसने सोचा कि बाप को कब्र में नमाज छोड़ने के ऊपर सपाटे पड़ेंगे, इसीलिए अब्बा की नमाज छूटी हुई का फिदिया अदा करो, छूटे हुए रोजों का फिदिया अदा करो, ये शरीयत में गुंजाइश है। अब उसने किसी मुफ्ती साहब के पास जाके काउंटिंग करवाया और उसकी काउंटिंग का एक चार्ट है, छूटी हुई नमाजों का फिदिया कैसे निकालने का। हम लोग आते हैं तो लोग को गिन के देते हैं हम लोग। तो अब 50 साल की नमाज का फिदिया गिना तो एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपये के गेहूं जिम्मे में आए। बेचारा बेटा गरीब है या मिडिल क्लास में है, 1 करोड़ रुपए का वो कहां से गेहूं लाकर के या आटा लाकर के वो फिदिया निकाले अपने मरहूम बाप का। तो उसमें से कैसे जितने पैसे अपने पास है अपनी कैपेसिटी में, अपनी कैपेसिटी के पैसे से अपने मरहूम की सारी नमाज और सारे रोजों का फिदिया अदा हो जावे, इसका एक हीला किताबों में लिखा हुआ है। वो हीले को अपनाएंगे तो मरहूम की नमाजें भी हो जाएगी, अल्लाह के यहाँ उसकी बख्शीश भी हो जाएगी, कम पैसों के अंदर हो जाएगी। ये हीला बाकायदा फुकहा ने किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए वो जायज हीला है। बाकी जो हीला शरीयत के ऑर्डर को बातिल कर देवे वो ममनू है, और जो अमल के लिए हो वो जायज है। अब जो आदमी भी आप में से अपने मरहूमों की नमाज रोजों का फिदिया अपनी कैपेसिटी के पैसों में अदा करना चाहे वो पर्सनली मुझे बोल मिल के हीला समझ ले रहे। इसलिए कि मैं यहाँ हिदाया पढ़ाने नहीं बैठा हूँ, अभी दो चार मिनट भी आपके फायरिंग हवाई हुई होगी फिकही इस्तिलाहत जब आती है तो हर एक को मैं समझा नहीं सकता, जिनको भी समझना हो पर्सनली मिलके समझ ले रहे। बाकी अल्लाह के पास बंदे मेरे पास ऐसे भी आए हैं, आप हैरान रह जाओगे कि बाप की नमाज और रोजों का फितिया इंडिया के 70 लाख रुपीस आए, वो भी उन्होंने खुशी खुशी अदा किए। ऐसी औलाद भी है दुनिया के अंदर। इससे आगे बताऊं कि इंग्लैंड से एक साहब का फोन आया कि मेरे अब्बा जान का जो है फिदिया देना है नमाज का, तो अबाउट इंडियन 2 करोड़ रुपीस का उसने फिदिया अदा किया है अपने मरहूम बाप की नमाज का रोजे का। ऐसी नेक औलाद भी होती है। तो बहरहाल जिनकी कैपेसिटी हो वो पूरा फिदिया अदा करे, मरहूम बाप ही ने तो सारी प्रॉपर्टी बसाई है, उसमें से कुछ बेच के फिदिया अदा करें, और जिनके पास कैपेसिटी ना हो वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अपने मरहूमों की नमाज और रोजे के फिदिये ज़कात अदा कर देवे, ताकि वो मरहूमों की अल्लाह के यहाँ मगफिरत हो जावे। तो हीला इबताले शरा के लिए मना और तामीले शरा के लिए हीला जायज, ये जो है इस आयत से लेसन मिलता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद की नूरानियत से मालामाल फरमाए, कुरान के अहकाम पर अल्लाह हमें अमल का जज्बा अता फरमाए, हमारे इस सिलसिले को अल्लाह बे इंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ने अपने करम से फिर से रमज़ान अता फरमाया, अल्लाह हमें उसकी कदर की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।